लाउडेटर यीशुस क्रिस्तुस, प्रभु यीशु मसीह की जय।
यह वैटिकन रेडियो का हिंदी प्रसारण है। आप सबको ईश पिता का स्नेहिल आशीर्वाद और हमारा अभिवादन।
नमस्कार श्रोताओ, आज के प्रसारण में प्रस्तुत है पापुआ न्यू गिनी में संत पापा फ्रांसिस की प्रेरित यात्रा पर एक संक्षिप्त रिपोर्ट। कार्यक्रम प्रस्तुता है जूलियट क्रिस्टोफर, सिस्टर उषा तिर्की और सिस्टर अनुग्रह मिंज। पापुआ न्यू गिनी में शनिवार को संत पापा फ्रांसिस ने दशकों से जारी जनजातीय संघर्षों को समाप्त करने का आह्वान कर इसके प्राकृतिक संसाधनों के धारणीय दोहन और समतापूर्ण विकास की अपील की। इस यात्रा के दौरान उन्होंने महिलाओं के खिलाफ हिंसा की समस्या पर भी चिंता जाहिर की। दक्षिण प्रशांत क्षेत्र के देश पापुआ न्यू गिनी में संत पापा ने अपना पहला दिन राजनैतिक और कलीसियाई संबंधी गतिविधियों के मिश्रण के साथ शुरू किया, जिसके दौरान घास की स्कर्ट पहने नर्तकियों ने फूल मालाओं को हाथ में लिए उनका हार्दिक स्वागत किया। शनिवार को पोर्ट मोरिस्बी में उन्होंने पापुआ न्यू गिनी के गवर्नर जनरल से मुलाकात की तथा वरिष्ठ सरकारी प्रशासनिक नागर अधिकारियों और देश में कार्यरत राजनयिक कोर के सदस्यों को संबोधित करने से पूर्व सड़क पर जीवन यापन करने वाले बच्चों तथा उनके हित में काम करने वाले लोकोपकारी संगठन के कार्यकर्ताओं से मुलाकात की। शनिवार को ही संत पापा ने पापुआ न्यू गिनी तथा सोलोमन द्वीप के कैथोलिक धर्माध्यक्षों, पुरोहितों, उपयाजकों, धर्म समाजियों और धर्म संघियों से मुलाकात की। सार्वभौमिक कैथोलिक कलीसिया के परम धर्म गुरु संत पापा फ्रांसिस इस समय दक्षिण पूर्व एशिया और ओशियाना के चार देशों की 11 दिवसीय प्रेरित यात्रा पर हैं, जो उनके परमाध्यक्ष काल की सबसे लंबी और सबसे चुनौतीपूर्ण यात्रा है। शुक्रवार शाम अपनी यात्रा के दूसरे चरण की शुरुआत करने के लिए संत पापा इंडोनेशिया के जकार्ता से राष्ट्रमंडल राष्ट्र की राजधानी पोर्ट मोरिस्बी पहुंचे थे। पापुआ न्यू गिनी में अपनी यात्रा का शुभारंभ करते हुए शनिवार प्रातः संत पापा फ्रांसिस ने पापुआ न्यू गिनी के गवर्नर जनरल सर बॉब दादई से पोर्ट मोरिस्बी में एक बहुत ही औपनिवेशिक दिखने वाले सरकारी आवास में शिष्टाचार भेंट की। इस अवसर पर पापुआ न्यू गिनी के कैथोलिक धर्माधिपति कार्डिनल जॉन रिबत भी उनके साथ थे। 2016 में संत पापा फ्रांसिस ने आपको देश का पहला कार्डिनल घोषित किया था तथा इसी वर्ष आप महारानी एलिजाबेथ द्वारा नाइटहुड की उपाधि से सम्मानित किए गए थे। सन 1975 में ऑस्ट्रेलिया से स्वतंत्रता प्राप्त करने वाला पापुआ न्यू गिनी एक स्वतंत्र राष्ट्रमंडल राष्ट्र है, जो चार्ल्स तृतीय को अपना राजा मानता है। आज पापुआ न्यू गिनी में रहने वाली 600 से अधिक जनजातियां मनुष्यों के उस समूह से निकली हैं जो लगभग 40,000 साल पहले एक आदिम नाव में यहां उतरे थे। 800 से भी अधिक बोले जाने वाली भाषाएं, यहां के लोगों में व्याप्त दुनिया के अलग अलग नजरिए और गर्व से प्रकट सांस्कृतिक पहचानों की समृद्धि को प्रतिध्वनित करती हैं, जिन्हें अतीत या वर्तमान, राजनीतिक या आर्थिक उपनिवेशवाद कभी भी खत्म नहीं कर पाएगा। शनिवार प्रातः गवर्नर जनरल के साथ शिष्टाचार भेंट के उपरांत वरिष्ठ सरकारी अधिकारियों को संबोधित शब्दों में संत पापा फ्रांसिस ने खुद पापुआ न्यू गिनी की सांस्कृतिक समृद्धि पर आश्चर्य व्यक्त करते हुए अधिकारियों को बताया कि वे लोगों की असाधारण सांस्कृतिक समृद्धि से बहुत प्रभावित हैं। उन्होंने कहा, मुझे स्वीकार करना होगा कि यह बात मुझे आध्यात्मिक स्तर पर भी बहुत आकर्षित लगती है, क्योंकि मैं कल्पना करता हूं कि यह विशाल विविधता पवित्र आत्मा के लिए भी एक चुनौती है, जो मतभेदों के बीच सामंजस्य स्थापित करते हैं। सांस्कृतिक समृद्धि से संपन्न पापुआ न्यू गिनी में भूमि को लेकर आदिवासी हिंसा और अन्य विवादों के संदर्भ में संत पापा ने यह भी कहा कि इस तरह की विविधता ने यहां लंबे समय से संघर्ष को जन्म दिया है, जो हाल के वर्षों में और अधिक घातक हो गए हैं। इस संदर्भ में संत पापा ने नागर जिम्मेदारी और सहयोग की भावना को बढ़ावा देने की अपील की, ताकि सभी को लाभ मिल सके।
संत पापा फ्रांसिस ने पापुआ न्यू गिनी गवर्नमेंट हाउस में गवर्नर जनरल सर बोब बोफेड ददाई को रोम से बहुत दूर और फिर भी कैथोलिक कलीसिया के दिल के इतने करीब खूबसूरत देश के दरवाजे खोलने के लिए धन्यवाद दिया। उन्होंने देश के लोगों को शुभकामनाएं दी जो सैकड़ों द्वीपों वाले एक द्वीप समूह में रहते हैं, जिनमें से प्रत्येक अद्वितीय जातीय समूहों का प्रतिनिधित्व करती है। संत पापा ने कहा कि देश प्राकृतिक संसाधनों से भी समृद्ध है जो ईश्वर द्वारा प्रदत्त पूरे समुदाय के लिए नियत वस्तुएं हैं, भले ही उन्हें उपयोग करने के लिए बाहरी मदद की आवश्यकता हो। उन्होंने कहा, आय वितरित करते समय और श्रमिकों को नियुक्त करते समय स्थानीय लोगों की जरूरतों का उचित ध्यान दिया जाए ताकि उनके जीवन स्तर में सुधार हो सके। संत पापा ने कहा कि इन प्रयासों के लिए इन संसाधनों को न्यायसंगत और टिकाऊ तरीके से विकसित करने के लिए बहुत जिम्मेदारी और सहयोग की आवश्यकता है। संत पापा ने अधिकारियों से अपील की कि वे देश के सभी लोगों के लाभ के लिए फलदायी सहयोग की ओर ले जाने वाले मार्ग पर दृढ़ता से चलें। उन्होंने कहा कि संवाद से आगे का रास्ता खोजने में मदद मिल सकती है ताकि स्वास्थ्य, शिक्षा और सम्मानजनक काम के अवसरों में सुधार हो सके। जीवन की बुनियादी आवश्यकताओं तक सभी की पहुंच सुनिश्चित करते हुए लोगों को अपने दिलों में बड़ी आशा की आवश्यकता है ताकि वे पूरी तरह से और सार्थक रूप से जी सकें। उन्होंने कहा कि कैसे विश्वास में निहित एक व्यापक आध्यात्मिक दृष्टिकोण की आवश्यकता है। आध्यात्मिक मूल्य सांसारिक और सभी लौकिक वास्तविकताओं के निर्माण को बहुत प्रभावित करते हैं। संत पापा ने बताया कि कैसे पापुआ न्यू गिनी में उनकी यात्रा का आदर्श वाक्य एक शब्द में अभिव्यक्त होता है, प्रार्थना करें। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि कैसे प्रार्थना करने वाले लोगों का भविष्य उज्जवल होता है जो ऊपर से शक्ति और आशा प्राप्त करते हैं। संत पापा ने कहा कि प्रार्थना पूर्ण स्वभाव आंतरिक स्वतंत्रता लाता है, जैसा कि प्रेरितिक यात्रा के लोगों में स्वर्ग के पक्षी की छवि है, ठीक वैसे ही जैसे राष्ट्रीय ध्वज पर स्वतंत्रता का प्रतीक है, एक ऐसी स्वतंत्रता जिसे कोई भी और कुछ भी दबा नहीं सकता क्योंकि यह हमारे भीतर है और ईश्वर द्वारा संरक्षित है। वे प्रेम हैं और चाहते हैं कि उनके बच्चे स्वतंत्र हों। संत पापा ने कहा, मैं क्रिश्चिय समुदायों की देश में उनके द्वारा किए जा रहे धर्मार्थ कार्यों की सराहना करता हूं। मैं उनसे यह भी आग्रह करता हूं कि वे हमेशा सार्वजनिक संस्थानों और सभी अच्छे इरादों वाले लोगों के साथ सहयोग करें, जिसकी शुरुआत अन्य क्रिश्चिय संप्रदायों और अन्य धर्मों से जुड़े अपने भाइयों और बहनों से करें ताकि पापुआ न्यू गिनी के सभी नागरिकों की आम भलाई हो सके। संत पापा ने धन्य पीटर टूरोट के साथ साथ धन्य जॉन माजुकोनी पीमे और सभी मिशनरियों की शानदार गवाही को याद किया जिन्होंने यहां अपना जीवन समर्पित किया और लोगों को शक्ति और आशा दी। पापुआ न्यू गिनी के स्वर्गीय संरक्षक महादूत संत माइकल हमेशा आप पर नजर रखें, आपको सभी खतरों से बचाएं और अधिकारियों और देश के सभी लोगों की रक्षा करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
पापुआ न्यू गिनी की राजधानी पोर्ट मोरिस्बी में शनिवार संत पापा फ्रांसिस ने विश्वव्यापी कैथोलिक उदारता संगठन कारितास की स्थानीय शाखा के टेक्निकल सेकेंडरी स्कूल में सड़क पर जीवन यापन करने वाले बच्चों तथा इनकी मदद करने वाले लोकोपकारी कार्यों में संलग्न कार्यकर्ताओं से मुलाकात की। कारितास के टेक्निकल सेकेंडरी स्कूल में पापुआ न्यू गिनी के कैथोलिक महाधर्माध्यक्ष कार्डिनल जॉन रिबत ने संत पापा फ्रांसिस का अभिवादन करते हुए कहा, हमारे संत पापा फ्रांसिस ने कहा है, कलीसिया में सभी के लिए जगह है। आज उनकी यात्रा हमें याद दिलाती है कि यीशु किसी पर उंगली नहीं उठाते बल्कि अपनी बाहें खोलते हैं और सभी को गले लगाते हैं, जैसा कि हम क्रूस पर उनके साथ देखते हैं। यीशु कभी भी दरवाजा बंद नहीं करते बल्कि हमें अंदर आने के लिए आमंत्रित करते हैं। यीशु सबका स्वागत करते हैं। संत पापा फ्रांसिस के शब्द हमें सांत्वना, समर्थन और प्रोत्साहन देते हैं। वे हमें अपने समाज में कमजोर लोगों के साथ रहने की प्रेरणा देते हैं ताकि हम अपने लोगों के बीच न्याय और शांति को बढ़ावा देने की अपनी प्रतिबद्धता को पूरा कर सकें। उन्होंने कहा, महामहिम संत पापा, आपकी यात्रा यहाँ एकत्रित हुए हम में से अधिकांश लोगों के लिए जीवन में एक बार होने वाला अनुभव है। हम आपकी यात्रा का हिस्सा बनकर उत्साहित हैं, जो हमें अपने विश्वासी समुदाय के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को नवीकृत करने के लिए प्रोत्साहन देती है। आपकी आवाज हमारे संघर्षों और हमारे दिलों में व्याप्त दर्द में हमें दिलासा देती है। हम आपके आभारी हैं कि आपने खुद को हमारे लिए उपलब्ध बनाया। कार्डिनल रिबत ने आगे कहा, हम विश्वास के उपहार को फिर से खोजते हैं और येसु के उठो और चलो के आह्वान को फिर से सुनते हैं। हमारी भूमि में आपकी उपस्थिति हम सभी को यह जानने में मदद करती है कि हम कौन हैं और क्या हैं। हम जो जानते हैं उससे प्यार करते हैं और इस प्रकार हम जिनसे प्यार करते हैं उनकी सेवा करते हैं। विज्ञान के महान प्रगति के युग में कलीसिया हमारे साथ रहकर हमें जीवन में आगे बढ़ाती और हमारी आशाओं को जीवित रखती है। इस प्रकार हम याद करते हैं कि हम कहाँ थे और हम कहाँ जा रहे हैं।
पोर्ट मोरिसबी के महाधर्माध्यक्ष कार्डिनल जॉन रिबेट के अभिवादन के बाद स्ट्रीट मिनिस्ट्री के एक समूह ने पारंपरिक गीत और नृत्य प्रस्तुत किया। इसके बाद दो बच्चों ने संत पापा से प्रश्न पूछा। पहला सांकेतिक भाषा में बोलते हुए संत पापा से पूछा, मैं दूसरों की तरह सक्षम क्यों नहीं हूँ। दूसरे बच्चे ने पूछा, हम अपनी दुनिया को एक सुंदर जगह बनाने के लिए खुद को कैसे उपयोगी बना सकते हैं। संत पापा ने बच्चों के पूछे गए सवाल के लिए आभार व्यक्त किया और इस सवाल के जवाब में मैं दूसरों की तरह क्यों नहीं हूँ, संत पापा ने इस बात पर प्रकाश डाला, हम में से कोई भी दूसरों की तरह नहीं है, हम सभी ईश्वर के सामने अद्वितीय हैं। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि प्रत्येक व्यक्ति की एक अनूठी भूमिका और मिशन है जो चुनौतियों और गहन आनंद दोनों को ला सकता है और सभी को उस प्रेम पर ध्यान केंद्रित करने के लिए प्रोत्साहित किया जो वे देते हैं और प्राप्त करते हैं, यह देखते हुए कि हमारा आनंद किसी और चीज पर निर्भर नहीं करता, केवल प्रेम पर। दुनिया को और अधिक सुंदर और खुशहाल कैसे बनाया जाए, इस सवाल का जवाब देते हुए संत पापा फ्रांसिस ने जोर देकर कहा कि प्रेम ही कुंजी है। उसी नुस्खे के साथ दिन प्रतिदिन ईश्वर और दूसरों को अपने पूरे दिल से प्यार करना सीखना। उन्होंने बच्चों को सीखने और खुद को पूरी तरह से लागू करके बढ़ने और बेहतर होने के लिए प्रोत्साहित किया। अंत में संत पापा फ्रांसिस ने सभी से दुनिया के लिए आशा के प्रतीक के रूप में प्रेम की ज्योति को जलाए रखने का आग्रह किया।
पापुआ न्यू गिनी की प्रेरितिक यात्रा के दौरान शनिवार को पोप फ्रांसिस ने मरियम क्रिस्तों की सहायिका तीर्थस्थल पर पापुआ न्यू गिनी और सोलोमोन द्वीप के धर्माध्यक्षों, पुरोहितों, धर्म सामाजिकों, सेमिनरी छात्रों और प्रचारकों से मुलाकात की और उन्हें प्रोत्साहन दिया कि वे नई शुरुआत करने में हमेशा साहसी बने, वर्तमान में होने की सुंदरता को बांटें और अपने मिशन की सफलता में आशा बनाए रखें। पोप के संदेश से पहले एक धर्म बहन, एक पुरोहित, एक प्रचारक और सिनोडालिटी पर धर्म सभा के एक प्रतिनिधि ने अपने साक्ष्य प्रस्तुत किए। पापुआ न्यू गिनी और सोलोमोन द्वीप में कुल 5 महाधर्म प्रांत और 17 धर्म प्रांत हैं। कलीसियाई आंकड़े अनुसार पापुआ न्यू गिनी में कुल 462 बलियां हैं। धर्म अध्यक्षों की संख्या 27 है। कुल 600 पुरोहित, 808 धर्म बहने, 328 सेमिनरी छात्र एवं 3124 प्रचारक हैं। संत पापा ने उन्हें संबोधित कर कहा, मैं आप सभी धर्माध्यक्षों, पुरोहितों, धर्म सामाजिकों, सेमिनरी छात्रों और प्रचारकों का शासनीय अभिवादन करता हूँ। मैं धर्माध्यक्ष सम्मेलन के अध्यक्ष को उनके शब्दों के लिए धन्यवाद देता हूँ, साथ ही जेम्स, ग्रेस, सिस्टर लोरेना और फादर इमानुएल को उनकी गवाही के लिए धन्यवाद देता हूँ। मुझे क्रिस्तों की सहायिका संत मरियम को समर्पित इस धर्म प्रांत तीर्थस्थल में आपसे मुलाकात कर बहुत खुशी हो रही है। संत मरियम की यह उपाधि संत जॉन बोस्को को बहुत प्रिय है। 1844 में जब माता मरियम ने डॉन बोस्को को तुरिन में अपने सम्मान में एक गिरजाघर बनाने के लिए प्रेरित किया तो उन्होंने एक वादा किया। मरियम ने उनसे वादा किया कि अगर उन्हें गिरजाघर का निर्माण करने का साहस है तो उन्हें बहुत कृपा मिलेगी, और ऐसा ही हुआ। गिरजाघर का निर्माण हुआ और यह सुसमाचार को फैलाने, युवाओं को तैयार करने और उदारता के कार्यों को करने का केंद्र बन गया, जो बहुत से लोगों के लिए एक संदर्भ बिंदु है। संत पापा ने कहा कि यह सुंदर तीर्थस्थल जिसमें हम अभी हैं, जो उसी कहानी से प्रेरित है, हमारे लिए हमारी ख्रिस्ते और मिशनरी यात्रा के तीन पहलुओं का प्रतीक हो सकता है। शुरू करने का साहस, वर्तमान में होने की सुंदरता और बढ़ने की आशा। इस तीर्थस्थल के निर्माणकर्ताओं ने अपने काम की शुरुआत बड़े विश्वास के साथ किया, जिसका परिणाम हमारे सामने है। फिर भी यह उन लोगों द्वारा की गई कई अन्य साहसी शुरुआतों के कारण भी संभव हो सका जो उनसे पहले आए। मिशनरी 19वीं सदी के मध्य में इस देश में आए और उनकी प्रेरिताई के पहले कदम आसान नहीं रहे। उनके कई प्रयास विफल हो गए, फिर भी उन्होंने हार नहीं मानी। महान विश्वास, प्रेरितिक उत्साह और कई बलिदानों के साथ उन्होंने सुसमाचार का प्रचार किया और अपने भाई बहनों की सेवा करना जारी रखा। उन्होंने आप तक सुसमाचार पहुंचाने में योगदान दिया, साथ ही ख्रिस्त की उसी आत्मा और उसी दानशीलता से प्रेरित रंगीन करिश्मे की संपदा सौंप दी। उनके शुरू करने और पुनः शुरू करने के कारण ही हम यहाँ हैं, और वर्तमान में चुनौतियों के बावजूद, जो कम नहीं है, हम बिना किसी डर के आगे बढ़ रहे हैं, यह जानते हुए कि हम अकेले नहीं हैं। प्रभु हमारे अंदर और हमारे साथ कार्य करते हैं, हमें उनके समान अपनी कृपा के साधन बनाते हैं। संत पापा ने कहा, इस संबंध में और जो हमने सुना है उसके आलोक में मैं आपकी अपनी शुरुआत के लिए एक महत्वपूर्ण दिशा की सिफारिश करता हूँ, अर्थात इस देश के बाहरी इलाकों में जाने के लिए। उन्होंने कहा, मैं उन लोगों के बारे में भी सोच रहा हूँ जो नैतिक और शारीरिक रूप से पूर्वाग्रह और अंधविश्वास के कारण हाशिए पर हैं। कलीसिया विशेष रूप से इन भाइयों और बहनों के करीब रहना चाहती है, क्योंकि उनमें यीशु विशेष रूप से मौजूद हैं, और जहाँ हमारे मुखिया मौजूद हैं वहाँ हम उनके संग हैं, और यह हमें दूसरे पहलू पर ले जाता है, उपस्थित होने की सुंदरता। हम इसे कीना शैलों में देख सकते हैं, जो समृद्धि का प्रतीक है। यह हमें याद दिलाती है कि हम पिता की नजर में सबसे सुंदर खजाने हैं। संत पौलुस हमें याद दिलाते हैं कि हम जो बीज बोते हैं उसका बढ़ना हमारा काम नहीं है, बल्कि प्रभु का काम है। अतः संत पापा ने कहा, हम धैर्य पूर्वक सुसमाचार का प्रचार करते रहें, कठिनाइयों या गलत फहमियों से हतोत्साहित ना हों, तब भी जब वे उन जगहों पर उत्पन्न होते हैं जहां हम उनका सामना नहीं करना चाहते। संत पापा ने कहा, प्रिय भाइयों और बहनों, आइए हम सब मिलकर प्रभु का धन्यवाद करें कि कैसे सुसमाचार ने पापुआ न्यू गिनी और सोलोमोन द्वीप में जड़ें जमा ली हैं। साहस, सुंदरता और आशा के गवाह के रूप में अपने मिशन को आगे बढ़ाएं। आप जो कर रहे हैं उसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं, और मैं आप सभी को अपने दिल से आशीर्वाद देता हूं, और आपसे आग्रह करता हूं, कृपया मेरे लिए प्रार्थना करना ना भूलें।
आई प्रे फॉर यू, यू प्रे फॉर मी।
मुलाकात के अंत में संत पापा ने धर्माध्यक्षों के साथ सामूहिक फोटो ली, और तीर्थस्थल से जाने से पहले संत पापा ने सामने के प्रांगण में मौजूद विश्वासियों का अभिवादन किया। उसके बाद वे प्रेरितिक राजदूतावास चले गए। पापुआ न्यू गिनी में अपने दो दिवसीय कार्यक्रम में संत पापा कल वहां के विश्वासियों के साथ ख्रिस्त्याग अर्पित करते हुए अपनी यात्रा को जारी रखेंगे। और इसी के साथ हिंदी प्रसारण समाप्त हुआ, अब तमिल में प्रसारण होंगे। नमस्कार।